ओम शांति। क्लास की शुरुआत एक छोटे से योग से करेंगे, मेडिटेशन से। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। स्थूल देह में विराजमान चेतना की वह तरंग, मैं हूं। देह के भव्य भार पर विराजमान एक ज्योतिर्मय बिंदु, मैं एक आत्मा हूं। एक तेजस्वी आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा, मुझ आत्मा से संपूर्ण देह में प्रकाश फैल रहा है। ज्योति का एक कण हूं। देह के भान से परे, इस देह से सर्वथा अलग मैं एक तेज पुंज हूं। अनुभव करें स्वयं को, वह चेतन सत्ता मैं हूं। मुझ आत्मा से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। वह शांति का बिंदु, संपूर्ण शांत मैं आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। पश्चिम जगत में कभी एक बहुत बड़ा विचारक हुआ था, जिसका नाम है लिपमैन, उस जोशुआ लिपमैन ने अपने संस्मरण में एक बात लिखी है। उसने लिखा था कि जब मैं जवान था तब मैंने एक लिस्ट बनाई कि जीवन में किन किन बातों की आवश्यकता है। सुख चाहिए, साधन चाहिए, वैभव चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई और सोचा कि ये लिस्ट पूरी हो गई और जीवन का लक्ष्य है कि इस पूरी लिस्ट को पूरा करना। फिर भी मन में विचार आया कि कुछ तो रह गया है और इसी विचार से उसने सोचा कि किसी से पूछा जाए कौन सी वो बात है जो इस लिस्ट में नहीं है और जो जीवन का लक्ष्य है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब पालू और जो एक महत्वपूर्ण बात है उसको ना पाऊं। तो फिर उसने सोचा कि इस शहर में एक व्यक्ति है बहुत बूढ़ा, क्यों ना उसके पास जाऊं और उससे पूछूं। और गांव के उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे वो लिस्ट दिखाता है कि जीवन का यह नक्शा, जीवन का यह मैप मैंने निकाला है जिसमें यह सारी बातें लिखी है जो कि मुझे जीवन में पानी है। वो लिखता है कि मैंने कम से कम 20-25 बातें लिखी थी। तो जब वो उस व्यक्ति के पास जाता है, उस बूढ़े व्यक्ति के पास, और उसको कहता है कि तुम्हारे पास अनुभव भी है, तुम उम्र में भी काफी बड़े हो, कृपया बताइए कि इसमें से कुछ रह तो नहीं गया है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति एक पेन लेता है और वो सारी लिस्ट कैंसिल कर देता है और नीचे 3 शब्द लिखता है। वो लिखता है पीस ऑफ माइंड। जब तक ये नहीं तब तक ये पाकर भी तुमने जो लिस्ट बनाई है कुछ फायदा नहीं। जब तक तुम इन 3 शब्दों को नहीं पाते, तो जोशुआ लिपमैन ने लिखा है कि मुझे बहुत क्रोध आया कि मैंने जो कुछ भी लिखा था उसको इसने काट दिया। पर अब उसके जीवन में उसने जो एक सबसे प्रसिद्ध किताब लिखी है, जो कि न्यूयॉर्क में बहुत लंबे समय तक बेस्ट सेलिंग बुक रही है उस समय 90s के अर्लीज में, पीस ऑफ माइंड, उसमें उसने यह संस्मरण लिखा है। और वो लिखता है कि उस व्यक्ति ने सही कहा था कि यदि मन की शांति नहीं तो जीवन में अगर सब कुछ मिल जाए तो भी वो व्यर्थ है, और यदि मन की शांति है तो जो कुछ उसने लिखा था वो सब भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। मन शांत हो जाए, मन में शांति आ जाए। हम देखते हैं कि इस जीवन में कितनी ही लिस्ट हमने बनाई है और उस लिस्ट को पूरा करने में हम लगे हुए हैं, परंतु शायद perhaps पीस ऑफ माइंड इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट, एंड perhaps वी आर जस्ट wandering फ्रॉम pillar टू पोस्ट सर्चिंग द unknown, एंड येट वी आर far far अवे फ्रॉम इट। मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, मन उसी एक ऐसे बिंदु तक पहुंच जाए जहां पर सब कुछ, जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो अर्थ है, वो संपूर्ण हमें समझ में आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप कल से यहां आए, परसों से यहां आए और कल से आप ज्ञान की बहुत ऊंची ऊंची और गहरी बातें सुन रहे हैं, और आपने एक बात अनुभव की होगी कि जैसे ही इस वातावरण में आए हो, जैसे ही इस प्रांगण में आए हो, यहां आते ही इस वातावरण में कोई एक चमत्कारिक शक्ति है, एक ऐसा वाइब्रेशन है यहां पर कि जो भी यहां आता है उसके मन में जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो टेंशन है, वो खींच लेता है। कोई तो कौन खींचता है ये तनाव, कौन से वाइब्रेशंस, कौन से प्रकंपन, कौन सी ऊर्जा इस वातावरण में है? यहां का वातावरण और संसार के किसी रेलवे स्टेशन, किसी एयरपोर्ट, किसी मार्केट प्लेस का वातावरण क्या अंतर है? आपने जाना होगा कि यहां पर एक मैजिकल पावर है, यहां पर एक अद्भुत सी शक्ति है, और वो जो शक्ति है और वो जो पावर है वो है साइलेंस की पावर। तो आज हम उसी साइलेंस पर चर्चा करेंगे। ये साइलेंस एक मैजिकल एमुलेट, एक ताबीज या ताबीज, एक ऐसा ताबीज है। हमने सुना है भारतीय संस्कृति में ताबीज पहनते हैं भूत प्रेत या बाधाओं से दूर रहने के लिए, अशुभ से दूर रहने के लिए, विघ्नों से बचने के लिए। वो ताबीज कुछ भी हो सकता है, कभी मंत्र होता है तो कभी मणि होता है, तो कभी रुद्राक्ष होता है, तो कभी कोई हीरा होता है, कभी कोई पत्थर होता है। परंतु विश्वास का नियम वहां काम करता है, लॉ ऑफ फेथ वर्क्स देयर। जो व्यक्ति वो ताबीज को पहनता है उसे ऐसा अनुभव होता है कि मैं सभी विघ्नों से सुरक्षित हूं, कोई भी बाधा मुझे नहीं आएगी। तो मौन एक ऐसा ही ताबीज है, एक ऐसा ही मंत्र है, एक ऐसा ही तिलिस्मन, जो यदि हमारे पास है तो हम जीवन में बहुत सारी बातें जो अब नहीं कर पा रहे वो कर सकेंगे। ये मौन क्या है, कैसे इस मौन को जीवन में लाए? अगर ये मौन हमारे जीवन में आ जाए तो कौन सा परिवर्तन होगा? अभी हम जो इस जीवन में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो हमें कहां ले जा रहा है? हमारी जो ऊर्जा है जो व्यय हो रही है, हमारी जो एनर्जी है जो डिसिपेट हो रही है, क्या उसे रोका जा सकता है? क्या ऐसा भी कोई लक्ष्य जीवन में लाया जा सकता है कि वहां पर पहुंच के हम संपूर्णता को प्राप्त होंगे, एक ऐसा अनुभव होगा, अ फीलिंग ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन? अभी आप हर व्यक्ति को देखो तो बस भाग रहा है, कहां भाग रहा है उसे भी नहीं पता, लक्ष्य अस्पष्ट है। तो सबसे पहले मौन की परिभाषा, उससे भी पहले हम सभी जानते हैं कि मौन कई प्रकार के हैं। एक है मुख का और एक है मन का। इस मौन की चर्चा हर धर्म ने की है, हर शास्त्र ने की है, यहां तक कि जो धर्मों को नहीं मानते और केवल नीति को मानते, मोरालिटी को मानते हैं, उन्होंने भी इस साइलेंस की चर्चा की है। यहां तक कि जिन्होंने अपने जीवन में झूठा मौन अपनाया वो भी इसके फायदों से अछूते नहीं रहे। तो ये जो अक्षर है मौन, म उ न, तीन अक्षर है, मन को उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अर्थात हटाना, न नकार, इस संसार के वातावरण से अपने मन को थोड़ा सा अलग करना और उसे अंदर ले जाना। हमारी जो भी दौड़ है वो बाहर की है, हम संसार से जुड़े हुए हैं, उसका एक कारण है स्पीच, मुखरता। और अध्यात्म की जो जर्नी है, अध्यात्म का जो सफर है वो आंतरिक है, हमें अंदर ले जाने वाला। और जिस जिस को अंदर जाना है उसको अपने आप को बाहर से थोड़ा तोड़ना होगा। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि कुछ लोग बहुत शराब पी गए और किसी नाव में बैठे और रात भर नाव चलाते रहे, सुबह हुई उनको लगा शायद हम बहुत दूर पहुंच गए हैं, परंतु जब देखा सारी नाव पतवार चलाते रहे, देखा वो लोग वही हैं, क्योंकि एक काम वो भूल गए थे। कौन सा था वो काम? नाव को किनारे से छुड़ाने का। नाव बंधी हुई थी। उसी तरह दो जगत है, एक बाह्य जगत, एक आंतरिक जगत। इस आंतरिक जगत में यदि प्रवेश करना है, चेतना के द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस, द जेनिथ ऑफ कॉन्शियसनेस में हमें अगर पहुंचना है, तो हमें भी स्वयं को इस बाह्य जगत से कुछ समय के लिए अलग करना होगा स्वयं को। और ये जो मौन की यात्रा है, ये अध्यात्म की यात्रा है। महात्मा गांधी ने एक जगह बहुत सुंदर बात लिखी है, यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था उसमें ये बात आई है, 6 अगस्त 1925। उन्होंने लिखा है कि मैं जब अफ्रीका में था तो वहां पर एक बार एक ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री थी, एक ट्रैपिस्ट नाम का मठ था जहां पर कुछ सन्यासी रहते थे, लगभग 500 से भी ज्यादा। और मैं जब वहां गया तो मैंने देखा वहां पर सभी चुप है, वहां सभी मौन में है। तो उस मठाध्यक्ष से मैंने पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, कौन सी, ये सब लोग साइलेंट क्यों है यहां पर? तो उस हेड ऑफ द मोनेस्ट्री ने कहा कि हम लोग, हम मनुष्य, वी आर सच फ्रेल इंडिविजुअल्स, वी डू नॉट नो व्हाट टू टॉक एंड व्हेन टू टॉक। देयर इज अ लिटिल वॉइस विद इन अस, दैट इज द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड वी कैन हार्डली हियर दोज दैट वॉइस। दैट वॉइस इज सो लिटिल एंड आउटसाइड वर्ल्ड हैज सो मेनी नॉइसेस अराउंड। How is it possible for us to hear that inner voice unless and until we stop our energy from going outside? जब तक हम अपनी ऊर्जा को बाहर जाने से नहीं रोकते, हमारे अंतःकरण में, अंतस चेतना में, अंतस की गहराई से जो आवाज उठ रही है, उस आवाज को हम कैसे सुनेंगे और क्या बोलना है और कब बोलना है और कितना बोलना चाहिए, यह हम नहीं जानते। इसलिए इस मठ का यह नियम है कि यहां जो भी आता है मौन व्रत उसे धारण किया कराया जाता है। उन्होंने लिखा है अपनी जीवन कहानी में, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ में, प्रोननेस टू एग्जैजरेट, प्रोननेस टू सप्रेस और मॉडिफाई द ट्रुथ इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मैन एंड साइलेंस इज नेसेसरी टू सरमाउंट इट। हम सत्य को मॉडिफाई करते हैं, हम सत्य को दबाते हैं, हम सत्य की अतिशयोक्ति करते हैं, और इस एक बात के लिए साइलेंस इज मस्ट। विदाउट साइलेंस यू कैन नेवर रियलाइज द अल्टीमेट ट्रुथ। ऐसी बात उन्होंने अपने जीवन कहानी में लिखी। हमें याद है हमारे अपने जीवन में बहुत समय पहले जब हमने 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी थी, उसके बाद ये किताब हमारे हाथ आई थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, क्योंकि हमें मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम देनी थी सेवाग्राम की महाराष्ट्र में। उसमें एक चौथा सब्जेक्ट होता था गांधीयन थॉट्स। तो ये छोटी सी किताब हमारे हाथ में आई थी, तब हमने ये बात पहली बार पढ़ी थी, प्रोननेस टू एग्जैजरेट, टू सप्रेस और मॉडिफाई द ट्रुथ इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मैन एंड साइलेंस इज नेसेसरी टू सरमाउंट इट। इस एक वाक्य को पढ़ के हमें याद है वो किताब पढ़ते पढ़ते हम 6 मास मौन में चले गए थे, 6 मंथ्स ऑफ साइलेंस जस्ट विद दिस लाइन। एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। जो संसार की ओर जाने वाला मार्ग था वो एकदम से टर्न होकर अध्यात्म की ओर टर्न हो गया। जब हमने पहली बार पढ़ा कि द गोल ऑफ दिस लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन, इस जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति. एंड द नेक्स्ट लाइन वॉज द ओनली गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन. एंड सच प्रोफाउंड साइलेंस आई वॉज एनवेलप्ड इन, सच डीप साइलेंस. पहली बार हमें पता चला कि जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस मौन का क्या अर्थ है. अब तक जो मन बाहर भाग रहा था, मन जो इतना चंचल, उसकी गति बाहर थी, एकदम से टर्न अंदर हो गई और वहां से हमारा आध्यात्मिक सफर चालू हुआ इस मौन से. तब मौन क्या होता है हमें पता नहीं था, परंतु हमें याद है वो जो 6 मार्क्स, हमारा रिजल्ट भी आ गया 12th स्टैंडर्ड का, हमको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल गए पीसीएम पीसीबी दोनों ग्रुप्स में, परंतु मन एक ऐसी स्थिर अवस्था में पहुंच चुका था कि हमने पाया कि जो जो हम सोचते थे वो होता था, जो जो हम संकल्प करते थे वो होता था. हमें अध्यात्म क्या है पता नहीं था, हाथ में केवल एक ही किताब थी और उसे किताब ने जीवन बदल दिया. मन को बाह्य चेतना से हटाकर अंदर ले जाना, स्वयं को देखना, स्वयं के बारे में सोचना. शास्त्रों में शब्द है स्वार्थ, वास्तविक में सबसे आध्यात्मिक शब्द है, परंतु गलत हाथों में पड़ा है. स्वार्थ अर्थात स्व के आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया गया पुरुषार्थ, अपने मुख को अंतर्मुखी कर देना और स्वयं को देखना, यह मौन है. मौन अर्थात केवल न बोलना नहीं है, मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात आत्मचिंतन, मौन अर्थात आत्मनिरीक्षण, मौन अर्थात सेल्फ एनालिसिस, मौन अर्थात सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मौन अर्थात रेट्रोस्पेक्शन, मौन अर्थात आत्ममूल्यांकन, सेल्फ अकाउंट, सेल्फ एनालिसिस. हम देखते हैं इतना हमें बोलने की इच्छा है, इतना हमें बोलने की इच्छा है. मौन की एक परिभाषा है, ये बोलने की जो उत्तेजना है उसको रोकना, ये जो पागलपन है बोलने का केवल उस पर नियंत्रण करना. सुनना हमें नहीं, हम नहीं चाहते. लिसनिंग हम, वी डोंट वॉन्ट, वी वॉन्ट टू स्पीक, वी वॉन्ट टू स्पीक. और कहीं ना कहीं इस स्पीच ने हमें अपने आप से बहुत दूर कर दिया है. पाश्चात्य जगत में साइकोलॉजिस्ट हुए हैं कार्ल जंग, सिगमंड फ्राइड का नाम आपने सुना है, उसी के शिष्य. उसने लिखा है अपने जीवन में एक बहुत सुंदर बात. उसने लिखा है कि उनका एक मेंटल हॉस्पिटल था, उस मेंटल हॉस्पिटल में 2 पागल थे और कार्ल जंग ने सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों की बातें सुनूं, वो दोनों क्या बात करते हैं. तो उसने उनका जो कमरा था, जो सेल था, कान लगाकर वहां बैठा और सुना कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं. देखा कि एक पागल बोल रहा है और जब वो एक बोल रहा है दूसरा चुप है, फिर दूसरा बोलना चालू करता है, परंतु जब दूसरा बोलता है तो पहला चुप है, परंतु उनके बोल में कोई तालमेल नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं. जहां वो व्यक्ति, पहला व्यक्ति बंद कर रहा है बोलना, दूसरा कुछ और ही चालू कर रहा है. उसे बहुत आश्चर्य होता है, ये क्या हो रहा है. वो दोनों के पास जाता है और कार्ल जंग उनसे पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग. तो वो कहते हैं कि जब एक बोलता है, ये बोलता है तो मैं चुप रहता हूं, और वो बोलता है तो मैं चुप रहता हूं. बिकॉज वी नो द लॉज ऑफ कॉन्वर्सेशन, हम क्या कर रहे हैं, केवल बातचीत के नियम निभा रहे हैं। वास्तव में जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है हम उसे नहीं सुन रहे, एक डायलॉग हमारे अंदर चालू है। वो तो केवल एक निमित्त है, वो जैसे ही रुकता है हमारा जो आंतरिक डायलॉग है वहां से ही हम अपना बोल चालू करते हैं। एंड सच इंटेंस डिजायर टू स्पीक, सच इंटेंस डिजायर टू बी एक्सट्रोवर्ट, इस एक बात ने हमारी ऊर्जा को नष्ट किया है, इस एक बात ने हमारी शक्तियों को नष्ट किया है। रिसेंट अभी अभी एक स्टडी आई यूनाइटेड स्टेट से, उसमें लिखा है कि वी स्पेंड 6. हम अपना मोबाइल फोन जो है 6.5 टाइम्स एक घंटे में चेक करते हैं, लगभग एक दिन में 150 से भी ज्यादा बार स्क्रीन टाइम, और एक एक संदेश कहो या उसमें जो कॉल कहो, दे ऑल पुल अवर एनर्जी एंड दे मेक यू एक्सट्रोवर्ट। तो मौन, हम वही प्रश्न पूछ रहे थे, इज इट पॉसिबल टू मेक दिस माइंड साइलेंट, इज इट पॉसिबल टू एंटर इनटू दैट स्टेज ऑफ साइलेंस, क्या यह संभव है कि हम अपने मन को उस शांत अवस्था में ले जाए, उस मौन की अवस्था में ले जाए जो मौन वाणी से चालू होगा परंतु मन के मौन तक हमें पहुंचाएगा। इसका मतलब यह भी नहीं हम कह रहे हैं कि आप चुप हो जाओ, बोलो ही नहीं, परंतु जो बोल है वो मौन से निकले। इफ साइलेंस इज एट द सेंटर, वर्ड्स एंड एक्शन आर एट द पेरिफेरी। दिस इज द गोल। शब्द जो है वो परिधि पर है, कर्म जो है वो परिधि पर हो, परंतु वो शब्द वो कर्म कहां से निकले, मौन से निकले, वो एक अंतर्मुखी स्थिति से निकले। और यहां आप सब जो आए हो इसी एक कार्य के लिए आए हो, स्वयं से हमारा जो कनेक्शन अपने आप से टूट गया है उसको पुनः स्थापित करने के लिए, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड टू रिकनेक्ट, स्वयं से स्वयं को जोड़ना। हिंदी में कहावत है, न बोले नौ फायदे, न बोलने के नौ फायदे। जैसे हमने कहा, बोलने की इच्छा, स्पीच की डिजायर, और उस नो डाउट स्पीच इज अ वेरी गुड आर्ट, नो डाउट स्पीच इज अ वेरी गुड आर्ट, बट साइलेंस इज इवन अ ग्रेटर आर्ट। साइलेंस जो है उससे कई गुना अधिक एक सुंदर कला है। और जब जीवन में साइलेंस आने लगता है तो बहुत सारी चीजें होने लगती है। अभी जो हम बोल रहे हैं, कई सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, स्पीच पर क्या क्या होता है जब हम बोलते हैं, तो बहुत सारी बातें निकाली है। जब बोलते हैं तो सबसे पहली बात जो कही गई है वो है ऊर्जा नष्ट हो रही है, निरर्थक बोल, व्यर्थ बोल ऊर्जा को खींच रहा है, इसलिए मौन शक्ति संचय का एक स्वर्णिम मार्ग है। यू स्टॉप योर एनर्जी फ्रॉम गेटिंग वेस्टेड, स्वयं की कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी इज साइलेंस। ज़ेन में एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था जो कि झूठा ज़ेन मास्टर था और जो अपने आप को कहता था मास्टर ऑफ साइलेंस। वो क्या करता था, उसने अपने पास दो शिष्य रखे थे और वो जो दो शिष्य रहते थे वो बोलते थे, उसे क्योंकि कुछ आता नहीं था, वो केवल चुप रहता था और अपनी चुप्पी की वजह से ही वॉज वेरी फेमस एंड पीपल यूज टू कॉल हिम मास्टर ऑफ साइलेंस बट इन फैक्ट ही वॉज अ सूडो मास्टर. ही डिडंट नो एनीथिंग. ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट ज़ेन नॉर रिलीजन नॉर ट्रूथ नॉर गॉड. परंतु उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुंच गई थी. दिखाया है एक बार एक व्यक्ति उसके पास आता है. जब भी कोई जिज्ञासु आता था वो अपने दो शिष्यों को हमेशा सामने रखता था और इशारों से बताकर वो उत्तर देते थे. बट इट सो हैपेंड कि एक बार वो दो शिष्य कहीं चले गए थे और एक जिज्ञासु सामने आ जाता है. अब इसका मौन है. वो जिज्ञासु पूछता है धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन. अब ये जो व्यक्ति होता है क्योंकि ये कुछ नहीं जानता है घबरा जाता है. अब क्या उत्तर दिया जाए और वो दो शिष्य भी नहीं है तो वो ऊपर देखता है और नीचे देखता है अपने शिष्यों को ढूंढने के लिए कहां चले गए. तो सामने का जिज्ञासु बहुत खुश हो जाता है ये सुनकर ये देखकर. फिर वो पूछता है सत्य क्या है. तो वो व्यक्ति मास्टर ऑफ साइलेंस इधर देखता है और उधर देखता है अपने शिष्यों को ढूंढने के लिए कहां चले गए. तो वो सामने का जिज्ञासु और ज्यादा खुश हो जाता है. फिर वो पूछता है व्हाट इज हु इज गॉड. तो वो ज़ेन मास्टर आंखें बंद कर देता है ये सोचकर कि अभी मैं क्या करूं. हे प्रभु मेरी रक्षा करो, अंदर से ऐसे बोलता है. तो सामने का जिज्ञासु और खुश हो जाता है. फिर वो जिज्ञासु पूछता है इस संसार के लिए आपका क्या संदेश है. तो वो जो ज़ेन मास्टर होता है वो कहता है अब तो मैं हार चुका हूं. पर वो सामने का जिज्ञासु और ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहां से जाता है. रास्ते में उसको वो दो शिष्य मिलते हैं. वो दो शिष्यों को कहते हैं कि तुम्हारे जो गुरु है बहुत पहुंची हुई हस्ती है. वो कहते हैं कैसे. वो कहता है मैंने जब उनसे पूछा सत्य क्या है धर्म क्या है तो उन्होंने ऊपर देखा और नीचे देखा. इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म अर्थात ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, समानता. फिर मैंने उनसे पूछा सत्य क्या है तो उन्होंने इधर देखा और उधर देखा. इसका अर्थ यह हुआ सत्य ना इधर है ना उधर, इधर उधर ढूंढने से सत्य नहीं मिलेगा. फिर तीसरा मैंने प्रश्न पूछा था भगवान कहां है तो उन्होंने आंख बंद कर ली. इसका अर्थात भगवान कौन है ये बताया थोड़ी जा सकता है. और फिर मैंने पूछा कि आपका संदेश क्या है तो उन्होंने ऐसे हाथ फैला दिए. इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरा जीवन ही उसकी सेवार्थ है. तो ऐसी पहुंची हुई हस्ती मैंने आज तक कभी देखी नहीं. इवन अ साइलेंस विच इज अ फेंड वन, इवन अ साइलेंस विच इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ कैन टेक यू टू सच एन एग्जाल्टेड स्टेज. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ साइलेंस. साइलेंस के और दो प्रकार है, एक सच्चा एक झूठा. रियल साइलेंस जो है वो स्वतः आएगा. इट विल बी द नेचुरल रिजल्ट. अंदर में मन इतना शांत हो गया है, इतना शांत हो गया है कि वो अपने आप बोल कम हो गए हैं. आपने देखा होगा आज सुबह यहां उठे थे आप सभी अमृत वेला, मन कितना शांत रहता है उस समय, कितना स्थिर रहता है, थॉट्स कितने कम होते हैं. और वो समय है वी आर मोस्ट पावरफुल, जब हमारे विचार कम होते हैं. तो जब वो विचार कम होते हैं उसकी एक्चुअली जनरेशन जो हो रही है वो मन की स्थिति से हो रही है. मन जितना शांत विचार कम और बोल कम. तो दिस इज रियल साइलेंस. एक दूसरा साइलेंस है झूठा साइलेंस, फॉल्स साइलेंस, सूडो साइलेंस. वो जो सूडो साइलेंस है बहुत खतरनाक है क्योंकि जबरदस्ती धारण किया हुआ है. कोई आए और उसको कह दो कि मौन व्रत धारण करो, क्यों करना है, क्या उसका लक्ष्य है, ये सब बातें उसे पता नहीं है. समटाइम्स दैट इज मोर डेंजरस क्योंकि वो प्रेशर कुकर जैसा है. सहन कर रहा है कोई, सहन कर रहा है, करते जा रहा है, परंतु बोलना नहीं है, अभिव्यक्त नहीं करना है अपने भावों को. वो इमोशनल प्रेशर बन रहा है, वो तो बहुत खतरनाक है। उस साइलेंस की हम बात नहीं कर रहे, हम उस साइलेंस की बात कर रहे हैं जिसमें मन शांत हो गया है। महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखाया है कि उनका शिष्य आनंद उनसे पूछता है कि आप जब सोते हो एक ही करवट पर सोते हो, रात को मैं 40 साल से आपको देख रहा हूं, आई एम विथ यू सिंस 40 ईयर्स, आप जिस करवट पर सोते हो सुबह उठ के देखता हूं उसी करवट पर हो, क्या आप सोते हो या नहीं सोते हो? वो कहते हैं, बहुत सुंदर उत्तर है, वो कहते हैं कि मेरा मन इतना शांत हो गया है कि मुझे करवट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। करवटें हम कब बदलते हैं? जब मन बेचैन होता है, मन अशांत होता है, इल एट ईज, अनइजी। मन इतना शांत हो गया है कि आई नीड नॉट टू टर्न साइड व्हेन आई बी टॉसिंग इन बेड, व्हेन आवर माइंड इज इन द स्टेट ऑफ एंग्विश, व्हेन द माइंड इज इन द स्टेट ऑफ अनरेस्ट, दैट कंटिन्यूअस अनरेस्ट, दैट स्टेट ऑफ टर्मोइल doesn't allow you to sleep quietly. You are tossing on the bed the whole night. जब मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, तब मौन स्वतः घटित होगा। तो एक मौन है सच्चा मौन, एक मौन है झूठा मौन, एक मन है वाणी का मौन, एक मन है मन का मौन। वाणी का मौन अर्थात स्पीच जहां कम हो जाए, वाणी का मौन अर्थात जो शब्द हम कहेंगे वो मधुर होंगे, जो शब्द हम कहेंगे उसमें एक प्रचंड प्रवाह होगा, जो शब्द हम बोल रहे हैं एक एक शब्द में पावर है, वाणी तेजोमय होगी, शक्ति होगी उसमें, एक साइलेंस का और प्यूरिटी का बल होगा उसमें। जो हम बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा जब हम नहीं बोल रहे, दो शब्द और दो वाक्यों के बीच जो अंतराल है, उस अंतराल में बहुत कुछ हम कह रहे होंगे। तो ऐसी तेजोमयी वाणी हो जाए, ऐसी दिव्य वाणी हो जाए, वो भी वाणी का मौन है, वाक् संयम है। मौन और चार प्रकार के गिनाए हैं। एक है काष्ठ मौन, काष्ठ मौन अर्थात जिसमें संपूर्ण शरीर को स्थिर किया जाता है। एक है इंद्रिय मौन, इंद्रिय मौन अर्थात ऑल सेंसेस आर इन द स्टेज ऑफ साइलेंस, ऑल सेंसेस, दिस टंग, दिस ईयर्स, दिस आईज, everything is running outside, everything wants to seek something which is unknown. छांदोग्य उपनिषद में एक जगह लिखा है, वाणी जो है वो चौथा पैर है आत्मा का, वाणी जो है, स्पीच इज द फोर्थ फुट ऑफ सोल, आंखें, नाक, कान, ये तीन पैर और चौथा पैर है वाणी, वाक् संयम। जिसने संयम किया है वाणी का, उनकी वाणी अद्भुत हो गई। इंद्रिय संयम, वाक् संयम और चौथा है सुषुप्ति संयम, जिसमें चित्त की जो वृत्तियां है वो भी संयमित हो गई। अभी अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, विश्व भर में योग की बहुत महिमा हुई, योग का फिर से नए सिरे से प्रचार और प्रसार हो रहा है। परंतु योग अर्थात केवल वो शारीरिक क्रिया नहीं है, चित्तवृत्ति निरोधः इति योगः, चित्त की जो वृत्तियां है, वृत्ति और मॉडिफिकेशंस ऑफ चित्ता, द रिस्ट्रेंड ऑफ दोज मॉडिफिकेशंस ऑफ चित्ता इस योगा। तो चौथे प्रकार का साइलेंस है सुषुप्ति मौन, जिसमें चित्त की वृत्तियां जो है जो भाग रही है वो भी शांत हो गई है, वहां तक पहुंचना है, वो लक्ष्य है। और ये जो संपूर्ण मेडिटेशन है वो है क्या, स्वयं के मन को शांत करना, स्थिर करना। मेडिटेशन जो है वो कोई डूइंग की क्रिया नहीं है, इट इज द आर्ट ऑफ बीइंग। मेडिटेशन जो है वो डूइंग की क्रिया ना होकर क्या है, आर्ट ऑफ बीइंग। एक बहुत सुंदर ज़ेन स्टोरी है जिसमें बताया गया है, एक ज़ेन मास्टर है बांके, चीन का एक बहुत बड़ा सम्राट, सोचता है मुझे इस मठ में जाना है, इस आश्रम में जाना है जहां पर लगभग 5000 से भी अधिक ज़ेन मंक्स रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, और मुझे देखना है यहां की हर एक बात। तो वो राजा उस मठ में आता है और वो जो बांके होता है मठाध्यक्ष, वो उनको हर एक चीज दिखाता है वहां की। ये जो है ये भोजनालय है, डिनर किचन है, ये जो है ये स्नान गृह है, ये जो है यहां पर जो यहां रहने वाले लोग हैं वो यहां पर घूमते हैं, यहां टहलते हैं, यहां स्नान करते हैं, यहां भोजन करते हैं, यहां भोजन खाते हैं। पर बीच में एक बहुत बड़ी एक जगह बनी होती है मंदिर के जैसी। जब भी राजा पूछता है यहां क्या है, तो वो जो बांके होता है वो ध्यान नहीं देता, ऐसे जैसे कि उसने सुना ही नहीं। फिर से राजा बार बार पूछता है कि ये जो जगह है बीच में इतना बड़ा जो हॉल बना हुआ है, वहां आप क्या करते हो जो मंदिर के जैसा है। परंतु वो ज़ेन मास्टर ध्यान नहीं देता। पूरा जब घूम के हो जाता है इतना बड़ा आश्रम, राजा कहता है मैंने इतनी बार आपको पूछा, एक बार तो बता दो ये जो स्थान है इतना बड़ा जो बीच में है वहां आप लोग करते क्या हो। तो वो ज़ेन मास्टर कहता है मैं कैसे बताऊं, मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया आपने, क्योंकि ये जो स्थान है वहां हम कुछ करते ही नहीं है, ये हमारा ध्यान सभा ध्यान गृह है, वी डोंट डू एनीथिंग, दिस इज नॉट द प्लेस ऑफ डूइंग बट दिस इज द प्लेस ऑफ बीइंग। हम यहां क्या करते हैं, कुछ करते ही नहीं है, कुछ करने के वजह से ही तो गड़बड़ हुई है। आत्मा जो हम हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप, हमने बहुत कुछ किया इसके लिए हम बाहर भाग चले गए। द वे इज टू स्टॉप नाउ फ्रॉम गोइंग आउटवर्ड्स, ऑल द प्रॉब्लम हैज अराइजन बिकॉज वी हैव गॉन आउट, नाउ वी हैव टू कम बैक। अभी हमें फिर से वही आना है जहां हम हैं। तो हम चार प्रकार के मौन की बात कर रहे थे। दिन भर सुबह से लेकर रात तक हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। एक इंग्लिश ऑथर ने लिखा है कि मुझे हमेशा उस चीज के लिए पश्चाताप करना पड़ा जीवन में जो मैंने बोल दी, उस चीज के लिए मैंने कम पश्चाताप किया जो मैंने बोली ही नहीं। इतनी सुंदर बात है, आई हैव ऑलवेज रिपेंटेड फॉर दोज थिंग्स विच आई हैव स्पोकन एंड नेवर फॉर दोज थिंग्स विच आई हैव नॉट स्पोकन। सुबह से लेकर रात तक हम बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। यदि हम में से किसी को एकांत में रख दिया जाए कि आपको किसी से कुछ नहीं बोलना है, तो शायद बेचैनी हो जाए। इसका अर्थ हम जो बोल रहे हैं एक सुरक्षा है हमारे लिए, हम अपने आप में नहीं रहना चाहते, अपने आप में नहीं स्थित होना चाहते, इसलिए किसी और का हमने सहारा लिया। वो तो खूंटी मात्र है जिस पर हम अपने आप को टंगा रहे हैं। बोलने से क्या क्या होता है, हम बोलने की महिमा आज नहीं करेंगे क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं मौन की और मौन हो जाने की। हम देखते हैं जब हम बोलते हैं वाद विवाद खड़े होते हैं, जब हम बोलते हैं बहस होती है, जब हम बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, जब हम बोलते हैं वैर भाव जन्म लेता है, ईर्ष्या द्वेष जन्म लेती है, जब हम बोलते हैं इतना कुछ बोल देते हैं कि जो हमें बोलना नहीं चाहिए, जब हम बोलते हैं बहुत सारी स्वयं की प्राइवेट बातें जो कि रिवील नहीं करना चाहिए वो भी निकल जाती है। महात्मा गांधी हर सोमवार को मौन रखते थे, एक दिन पूरा मौन न बोलना। अरविंद महर्षि ने 17 साल मौन रखा, और जब इस मौन से ये लोग बाहर निकलते थे उनके अंदर एक फ्रेशनेस रहती थी। साइलेंस इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। जब हम बोल रहे हैं दूसरे के भावों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्या कह रहा है, हमारा सारा ध्यान कहीं और है। जब हम बोल रहे हैं और सारे दिन भर बोलते रहते हैं, कितना टाइम हमारा जा रहा है, कितनी एनर्जी जा रही है। जैसे हमने कहा हमारे अपने जीवन में वो जो समय था जिसमें हम मौन में चले गए थे, एक फिर से ऐसा एक समय आया जब हमको ये लगा कि जीवन का लक्ष्य यदि ईश्वर प्राप्ति है तो मैं क्या कर रहा हूं। बहुत सारे सत्संग सुने संसार में, और उन सत्संगों को सुनते सुनते फिर एक बार हमको याद है आफ्टर इंटर्नशिप MBBS के बाद फिर से मन ऐसे ही मौन में चला गया। उस पीरियड में इंटेंस डिजायर एक जन्म हुई हृदय में कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, किस लिए हूं, क्या केवल पेशेंट्स की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य है, क्या उससे भी परे कोई सत्य है जिसे मुझे जानना है, क्या यही हाईएस्ट चेतना की अवस्था है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठे और उस खोज ने हमको इस संस्था तक, इस यज्ञ तक पहुंचाया। वो खोज, दैट क्वेस्ट। और जब जब मन स्वतः ही शांत और मौन में चला जाता है, नए रिविलेशंस आते हैं, न्यू ट्रुथ्स इमर्ज। परखने की जो शक्ति है हमारी इतनी तीव्र हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है, पावर टू डिसाइड, पावर टू जज, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, व्हाट इज रियल, व्हाट इज अनरियल, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज अनट्रू, एवरीथिंग कम्स टू अस। सब कुछ अपने आप हमें आने लगता है। यदि हम एक दिन यहां बैठकर, आप सभी ये देखें कि आप जहां कार्य करते हैं सुबह से लेकर रात तक, स्वयं को साक्षी होकर देखना है, स्वयं को, आप पाओगे कि जो कुछ मैं कर रहा हूं अगर वही सारा कार्य चुप रहकर किया जाए, जहां आवश्यकता है बस उतना ही बोलकर किया जाए, तो शायद Perhaps we would be more powerful। तो अभी सभी 2 मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे। इस 2 मिनट में अपनी आंखों के सामने अपने घर को, अपने ऑफिस को, जहां आप कार्य करते हैं, चाहे वो कोर्ट है या और कोई स्थान, उसको सामने लाएंगे और स्वयं को देखना है सुबह से लेकर रात तक। मैं आत्मा देख रही हूं स्वयं को, उस स्थान को जहां मैं कार्य करती हूं, एक विहंगम दृष्टि, अपने कार्य क्षेत्र पर, अ बर्ड आई व्यू, देख रहा हूं कैसे उठता हूं, किन संकल्पों के साथ उठता हूं, कैसे तैयार होता हूं, कैसे भाग रहा हूं। यह भाग दौड़ देख रहा हूं अपने ऑफिस को, देख रहा हूं कितने लोगों से मिल रहा हूं, देख रहा हूं कितना अशांत हूं, देख रहा हूं बोलने की कितनी आतुरता है, देख रहा हूं स्वयं को, क्या सिद्ध कर रहा हूं, क्या सत्य को सिद्ध कर रहा हूं, क्या संपूर्ण सत्य स्वयं सिद्ध नहीं है, देख रहा हूं स्वयं को, सत्य में ये क्या मिश्रित हो रहा है, देख रहा हूं स्वयं को, ये कौन सा ट्रेड ऑफ फॉल्सहुड है, क्या यही मेरा जीवन है, देख रहा उन सभी स्थानों को जहां मैं रोज कार्य करता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सभी कार्य मैं एक परम मौन की अवस्था में करूं, क्या ये हो सकता है जिस साइलेंस को मैंने छोड़ दिया है वही मेरा वास्तविक स्वरूप है, क्या ये आवाज, क्या ये नॉइस कहीं खो तो नहीं गया, क्या यही जीवन का सत्य है, लेट मी सी माई सेल्फ, हु आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, Is this the reality of my life? Is this real me? Where I am rushing? Is the goal of life lost somewhere? I see myself. I see all the people. I see all the places. I see that world of traffic. Traffic outside and traffic within. Am I lost in this hustle and bustle of this world? Let me turn back. See how I am traveling. So tired. So much in stress. Is this real me? I come back home and I am again lost. What dreams I had in my life? Where is that inner peace? Where is that bliss? Where is that joy? Where is that ecstasy of life? I remember those spirits of my childhood. How carefree I was. How close to nature. Is this the goal of life? Is this what I have achieved? This wealth, this property, this technology. But who I am? चेतना को फिर से भ्रकुटी में केंद्रित करें। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, यही मेरा निज धर्म है, यही मेरी निजता है। मैं एक अति शांत चेतन आत्मा हूं और यही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। हम शांत हैं। ईश्वर के बगीचे में एक अंगूर की बेल थी कभी, और उस बेल ने एक दिन कहा ईश्वर से, हे प्रभु, मैं परेशान हो गई हूं। उस बेल ने ईश्वर से कहा कि मैं परेशान हो गई हूं, कितना मैं बढ़ू, कितना मैं आगे जाऊं। और उसने घोषणा कर दी, मैं नहीं बढ़ूंगी, मैं नहीं बढ़ूंगी और मैं नहीं बढ़ूंगी। वो जो बेल थी बगीचे की, जो बढ़ती थी, भगवान ने कहा, जैसी तेरी इच्छा, तुझे क्या आवश्यकता है बढ़ने की। परंतु वो बेल बढ़ती गई, वो बेल बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि बढ़ना ही उसका स्वभाव है, बढ़ना ही उसका निज धर्म है। कहानी वहीं पूरी होती है कि वो बेल नहीं रुकी, उसने संकल्प किया फिर भी नहीं रुकी, क्योंकि उसका स्वभाव ही है बढ़ना। उसी तरह हमारा जो स्वभाव है वो भी है शांत रहना। हमारा जो स्वभाव है वह भी है स्थिर रहना, स्वयं की वह इनर हार्मनी, स्वयं से जो तदात्म्य है उससे जुड़े रहना। यह जीवन है, यह जीवन का लक्ष्य है। सभी ने देखा अपने आप को, देखा क्या दिखाई दिया? क्या हम शांत दिखाई दिए? जितने शांत हम यहां हैं, क्या उतने ही शांत वहां हैं? जितने ही स्थिर यहां हैं, क्या उतने ही स्थिर यहां हैं? जितने ही चिंताओं से मुक्त यहां हैं, क्या उतनी ही चिंताओं से मुक्त वहां हैं? शायद नहीं। क्यों क्यों? स्वयं स्वयं से पूछना है। यहां जो आप आए हैं, हम एक बात कहेंगे, ये किसी के कहने से नहीं आए, किसी के बुलावे से नहीं आए, किसी ने आपको आमंत्रण दिया इसलिए यहां नहीं पहुंचे हैं। शायद जन जन जो पुण्य किया है, उस पुण्य ने ढकेल ढकेल कर यहां तक पहुंचाया है। क्यों पहुंचाया है? क्योंकि जिस स्थान पर आप उपस्थित हो, ये जो स्थान है ये साधारण स्थान नहीं है। इस संसार में असंख्य हजारों तीर्थ है, परंतु उन तीर्थों में ये महातीर्थ है, क्योंकि ये वह स्थान है जहां पर स्वयं भगवान का अवतरण होता है। ये वह स्थान है जहां पर असंख्य आत्माओं ने अपने जीवन को, अपने यौवन को इस यज्ञ की वेदी पर अर्पण किया है। ऐसी समर्पित आत्माएं इस संसार में और अन्यत्र कहीं पर नहीं। ऐसी आत्माएं, ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन एक ईश्वरीय प्रेम की धारा से बह रहा है, जिनके जीवन में वो परम शांति को उन्होंने पाया है, उस ओशन ऑफ पॉजिटिविटी में आप इस समय उपस्थित हो। इसलिए यहां आते ही मन शांत हो जाता है। शुद्ध संस्कृति का ये द्वीप है एक, और आप यहां जो आए हो अपने आप को उस शांति से भरने के लिए, स्वचिंतन करने के लिए, अपने आप को उस मौन से भरने के लिए, ताकि यहां से जब जाओ तो यही मौन वहां पर रहे, चेतना की वही स्थिति वहां रहे, वहां कहीं खो ना जाओ। तो हम बात कर रहे थे बोलने के बारे में, जब बोलते हैं तो इतनी सारी बातें हो जाती है, द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं, विवाद होता है, डिबेट होता है, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है, और जब हम शांत होते हैं तब क्या क्या होता है। एचजी वेल्स एक इंग्लिश ऑथर है, 1911 उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। कंट्री ऑफ द ब्लाइंड उसमें दिखाया है एक व्यक्ति है जिसका नाम है नूनियस। वो जो व्यक्ति है एक बार भटकते भटकते एक पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहां से नीचे गिर पड़ता है और एक नए जगत में प्रवेश करता है। ये जो जगत है ऐसे लोगों का जगत है जो संसार के मेन स्ट्रीम से बाहर है, उन्हें संसार में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है। He reaches that valley of unknown people, और वहां पर सभी लोग अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, क्योंकि बचपन में ही सभी को एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि बचपन में ही सभी अंधे हो जाते हैं। He reaches that country of blind, और ये जो व्यक्ति है उसने ऐसे देश के बारे में कभी बचपन में कहानियों में सुना था कि ऐसा एक देश है कि जहां पर सभी अंधे हैं। वो सोचता है मैं तो राजा हूं यहां पर, वन आइड इज किंग इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लाइंड, इवन वन आइड। तो वो वहां रहने लगता है, परंतु वहां के जो लोग होते हैं सब अंधे होते हैं, वो देखते हैं ये जो व्यक्ति है ये अलग है, इसे कोई बीमारी है, इसकी जो आंखें हैं ये शायद कोई दोष है इसकी, इसके शरीर में। वो वहां काम करने लगता है। दिखाया है उस कहानी में कि वो जो व्यक्ति है जिस घर में काम करता है, जिस व्यक्ति के यहां, उसकी जो डॉटर होती है, उसकी बेटी, उससे इसे प्यार हो जाता है, और वो प्यार इतना हो जाता है कि वो उसकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। वो प्रस्ताव रखता है कि आई वॉन्ट टू मैरी, तो सारा गांव विरोध करता है। वो कहता है ये जो व्यक्ति है ये कोई विक्षिप्त है, बीमार है, बाकी सब तो ठीक है, पर ये जो आंखें जो दिख रही है ये पहले हटाओ, उसके बाद ही ये शादी होगी, नहीं तो नहीं। वो कहते हैं व्हाट इज दिस, मैं अपनी आंखें को कैसे निकालूं, ये तो सब आप लोग अंधे हो, मेरे पास तो आंख है, पर वो लोग मानने को तैयार नहीं। वो जिससे उसकी प्यार हो जाता है उससे बात करता है, बहुत बात करता है, और आखिर वो मान जाता है उस प्यार की खातिर कि ठीक है मैं अपनी आंखें निकाल लूंगा शादी करने के लिए। दिखाया है कि दूसरे दिन सुबह आंख निकलने वाली होती है उसकी आंखें। सुबह सुबह वो पहाड़ियों पर चढ़ता है और वादियों को देखता है, उस सूरज को देखता है, उस क्षितिज को देखता है, उन फूलों को देखता है और सोचता है इतना सुंदर ये, और मैं ये क्या करने जा रहा हूं, और वहां से भाग निकलता है। इसके मॉडिफाइड वर्शन से उसमें दिखाया है कि वो उस लड़की को लेके भाग जाता है। ये कहानी हम क्यों बता रहे हैं आपको, कहानी यहीं तक है और इसका बहुत सारा विस्तार है। जब कोई व्यक्ति शांत होता है और वो बोलने वालों की दुनिया में पहुंचता है तो सब उसका विरोध करते हैं। सब कहते हैं तुम यू आर एबनॉर्मल, यू बिकम लाइक अस, देन ओनली वी विल एक्सेप्ट यू, अदरवाइज नॉट। बट द वन हु हैज टेस्टेड द मेलोडी ऑफ साइलेंस, द वन हु हैज नोन द रिदम ऑफ साइलेंस, द वन हु नोज द एक्सटेसी ऑफ साइलेंस, द वन हु हैज टेस्टेड दैट रैप्चर ऑफ साइलेंस, he cannot get deceived by anybody, because you know the highest power. Swami Vivekananda has said the greatest silence are fed, the highest powers are manifested when we are calm, when we are silent. No matter how eloquent somebody is, no matter how fluent somebody is, the greatest fluency, the greatest eloquence is of silence. सबसे बड़ा जो संवाद है, सबसे धारा प्रवाह जो वाणी है वो मौन की है। मौन से क्या क्या होता है, ये एक दूसरा प्रश्न है। अब सबसे पहली बात, जब हम मौन होते हैं शक्ति का संचय, वन। सेकंड, जब हम मौन होते हैं हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हमारी जो संवेदनशीलता है वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि दूसरों के मनों में क्या चल रहा है वो हम जान सकते हैं। जब हम शांत हो जाते हैं हर परिस्थिति को हम रीड कर सकते हैं, यहां तक कि क्या होने वाला है इसकी भी एक पूर्व कल्पना हमारे मन में आने लगती है। हाइटेंड सेंसिटिविटी इज द रिजल्ट ऑफ साइलेंस। दूसरों के भावों को, भावनाओं को, इच्छाओं को हम समझ पाते। द मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन। Everybody is trying to prove that I am right, and perhaps that is the reason of all our conflicts. Heightened sensitivity. तीसरा, जब हम मौन होते हैं हमारे अंदर एक जागरण घटित होता है, a stage of awareness, a stage of awakening, heightened stage of awakening. जिन चीजों को हमने अब तक नहीं समझा था अचानक समझ में आती है, जिन बातों को अब तक हमने नहीं जाना था, जीवन में जो घटनाएं हुई थी अब तक वो प्रश्न चिन्ह है, हु ये क्यों हुई, अचानक से उसके पीछे का जो रहस्य है वो खुल जाता है। हाइटेंड अवेयरनेस, हाइटेंड स्टेज ऑफ अवेयरनेस। नेक्स्ट, ये जो निसर्ग है, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में, प्रकृति से हमारा कुछ संबंध है, हम टूट चुके हैं इस प्रकृति से, हमारा जो है बहुत बड़ा डिस्टेंस बीच में हो गया है। जैसे ही हम शांत होते हैं इस प्रकृति की आवाज हमें सुनाई देती है,
यहां का वातावरण आप सबको कैसा लग रहा है? कैसा है? सभी से प्रश्न है, यहां का वातावरण कैसा लग रहा है? कैसा निसर्गरम में वातावरण है, चारों ओर हरियाली, पहाड़। यहां आते ही मन जैसे खुल जाता है। मौन से भी यही होता है। इस प्रकृति से हमारा जो संबंध है, हमारा जो तदात्म है, हमारा जो रिलेशनशिप है, वो फिर से स्थापित हो जाता है। अभी हम फिर से 3-4 मिनट के लिए स्थिर बैठेंगे। कुछ आवाजें आपको सुनाई देगी, कुछ प्रकृति की आवाज होगी, और यह अभ्यास आपको रोज करना है। यहां से जाने के बाद भी चाहे तो आप आंख बंद कर सकते हैं, और जो भी आवाज अभी आप सुनेंगे, संपूर्ण फोकस उस आवाज पर करना है। वो प्रकृति की आवाज है, वो चिड़ियों की चहचहाट, केवल और केवल वो आवाज सुनाई दे, और अपने मन को उस आवाज पर केंद्रित करते 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 शांत कर देना। ये भी एक योग का अभ्यास है। तो सभी अपने शरीर को संपूर्ण निश्चल कर दे, निश्चेष्ट, विदाउट एनी मूवमेंट, एब्सोल्यूट साइलेंट पोज, नॉट इवन द मूवमेंट ऑफ टंग, एंड फोकस ओनली ऑन दिस म्यूजिक, फोकस ओनली ऑन दिस चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, ओनली एंड ओनली ऑन दिस बर्ड, ओनली ऑन दिस म्यूजिक, एंड फील दैट प्रेजेंस ऑफ साइलेंस विद इन यू। जब हम शांत होते हैं, और एक चीज होती है, संबंधों में जो कड़वाहट है, जो वैमनस्य है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। साइलेंस गैप की आवश्यकता है। एक कंपनी है प्रोमेगा, जिसमें उनके एम्प्लॉय जो है दोपहर को 15-20 मिनट सॉलिट्यूड टाइम दिया जाता है। वैसे हम स्वयं को भी दे, समय पूरा हो रहा है, कुछ बातें जो टेक होम मैसेजेस की तरह है, या तो डायरी में लिख ले या अपने मन में। सबसे पहली बात, अपनी रोज की दिनचर्या में सुबह 8 बजे तक का जो समय है, जितना हो सके उतना साइलेंस, एटलीस्ट टिल 8 o'clock, no talks. दूसरा, रोज सुबह के समय कुछ समय स्वयं को मेडिटेशन में स्थिर करें और कुछ समय प्रकृति के साथ। जो आवाज है अभी हमने सुनी, ऐसी ही रोज हम प्रकृति के सानिध्य में जाएं and try to appreciate the beauty of nature, and then you will start realizing the difference of the winds, the difference of the breeze of one season from another season. Then you will start hearing the voices of those birds whom you never heard before. What is this like? Full of care, we have no time to stand and stare, no time to stand beneath the bough and stare as long as ship and cow. A poor life, this is full of care, we have no time to stand and stare. डब्ल्यू एच डेविस ने लिखा है कि कैसा यह जीवन है, समय ही नहीं है। तो ये दो कार्य। तीसरा, सारे दिन भर में बीच बीच में जैसे यहां ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है वैसे स्टॉप हो जाना और उस साइलेंस में स्वयं को देखना। चेक यूर सेल्फ, लास्ट 3 hours एक्टिविटीज, लास्ट 4 hours एक्टिविटीज, हर 3-3 या 4-4 घंटे में बीच बीच में रुकना, चुप हो जाना या तो आंखें बंद कर लेना, एक स्थान पर बैठ जाना एंड लुक बैक, एवरीथिंग इज ऑल राइट। चेक यूर सेल्फ, एम आई इन टच विथ माई सेल्फ, आई एम लॉस्ट द टच विथ माई सेल्फ थ्रू आउट द डे। इवनिंग, इवनिंग टाइम में भी sit down and review the entire day in the evening. If possible, again go for a very long walk. Very long walk. Walk कितने लोग करते हैं? सभी करते हैं। एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, मेरा मेरे पिताजी के साथ एक बार झगड़ा हो गया, मैं घर छोड़कर चला गया, पैसे थे नहीं, पैदल जाने लगा, चलने लगा चलने लगा चलने लगा। पिताजी को कहा, मैं एक तो आप रहोगे या मैं रहूंगा इस घर में। चलने गया, चलते गया, चलते गया 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, और चलते 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 ऐसा लगा गलती तो मेरी है। वॉकिंग ट्रांसफॉर्म मी, मुझे तो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। और लिखता है कि फिर मैं घर वापस आ गया। व्हाई दैट हैपेंड? वॉकिंग। ही मेंशंस दिस इन द बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग। सो गो इन द कंपनी ऑफ नेचर, enjoy nature evening. Again at night, digital detox. Digital detox. Gmail, email, WhatsApp, social media. कितना हमको बाह्यमुखी कर रहे हैं? Can we put an end to that for some time? Disconnect to reconnect. All the social media, all the messages, all the calls, at least for some time, if possible, can we become silent? And some spiritual reading at night. This is some of the homework. This is some of the things you have to take from this. And churn, think, contemplate, cogitate on your own self, on your own existence, who I am, what I am, why I came in this world, what is the goal of life, where I am running, is this the goal of life? Think deeply, contemplate deeply, go within yourself and begin this inner journey. Om Shanti.
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सचिन जी। मैं समझती हूँ आप सभी ने मौन का अनुभव किया होगा और यही मौन का अनुभव आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपका जीवन भी इस जो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है कि कैसे यह आध्यात्मिकता आपके जीवन में सुख और शांति लाएगी, तो इस मौन के अभ्यास से आपको बहुत फायदा होगा और आपके जीवन में जो भी विघ्न आए हैं या मुश्किलें हैं वो सब आप इस फोन के द्वारा ही पार करेंगे। पुनः एक बार डॉक्टर सचिन जी का धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।